हाँ, तो इसलिए सिद्धांत ऐसा है कि वो जो है तो इसलिए वहाँ कैवल्य का अर्थ जहाँ भी जाएंगे भागवत समस्त में मोक्ष मोक्ष मुक्ति मुक्ति यही अर्थ आएगा। लेकिन यहाँ कैवल्य के प्रयोजन में जो कैवल्य है उसका अर्थ है प्रेम, और प्रेम का जो है वो सबसे बड़ा आदर्श है गोपी प्रेम की ध्वजा है। इस प्रकार से समय के अभाव से मैं थोड़े शब्दों में जो है वो बस
व्याख्यानम कृष्ण शब्द से मथुराया निरूपित। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा, बाकी भक्ति जी को मैं जाने नहीं दूंगा, वो परावे हैं जाने की में, पर मैं मैं आज जाने नहीं दूंगा, इनको सबको सुनवाऊंगा और इन्हें बैठ के सुनूंगा। अब मैं श्री जगदीश जी से निवेदन करूंगा, श्री जगदीश आचार्य, और देखिए हमें सभी विद्वानों से सुनना है तो आपके दर्शन कराना और आपकी वाणी से कैवल्य प्रयोजनम का अर्थ आप किस तरीके से और कोई नया प्रस्तुत करें तो बहुत अच्छी प्रसन्नता होगी। बता रही आप गोवर्धन के आचार्य हैं, अनेक विषयों के आचार्य हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं।
वृंदारण्ये तपन तनया तीरवाणी कुंजे गुंजन मंजु भ्रमर पटली काकली के लिभाजी आभीराणाम मधुर मुरली नाद सम्मोहितानाम मध्ये क्रीडन नवतु नियतम नंद गोपाल बालः श्रवसो कुबुलय मक्षणो रंजन मुरसो महेन्द्र मणिदाम वृंदावन युवती नाम मंडन मखिलम हरिर्जयती। परमादरणीयाध्यक्ष महोदयाः, संपागताः विद्वांसः, भक्ताश्च, इस पवित्र सभा के मध्य में मुझे भी अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर प्राप्त हुआ है, किंतु संयोजक जी की आज्ञा के अनुसार सूक्ष्म रूप में ही कुछ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि संसार में जीवात्मा का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि भवसागर को पार करना। वो भवसागर किस प्रकार से पार किया जाए इसके विषय में विद्वानों के, आचार्यों के, मनुष्यों के मतभेद हमेशा से रहे हैं और रहते चलेंगे। इस भवसागर को पार करने के लिए शास्त्रों में ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, तीन मार्गों का निर्देशन किया गया है। तीनों ही मार्ग भगवत प्राप्ति के साधन है। इन तीनों ही मार्गों से जो भी जीव श्रद्धा पूर्वक विश्वास करके ईश्वर के ऊपर विश्वासित होकर के और चलता है उसे प्रभु के पादों की प्राप्ति होती है। भागवत शास्त्र में भी अनेकों प्रकार से भगवान को प्राप्त करने का मार्ग बतलाया गया है। एक जगह कहते हैं कि संसार सिंधु मत दुस्तर मुत्तीर्षो नान्य प्लवो भगवत पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रसनिसे वणमंतरेणो पुंसो भवेद विविध दुख दवातुरस्य। भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करने से ही मनुष्य संसार सागर को पार कर सकता है। यहाँ पर एव कार दिया गया है, संस्कृत भाषा के जानने वाले लोग समझेंगे एवकार अन्य की व्यावृत्ति में बतलाया जाता है कि केवल कथा सुनने से ही भगवान के गुणानुवादों का श्रवण करने से ही भगवत तत्व की प्राप्ति होती है। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद के 13वें अध्याय का श्लोक है। प्रायो करके अपने धार्मिक ग्रंथों की ये रीति है कि शुरू में और अंत में उस शास्त्र का निचोड़ बतलाया जाता है। उसी को बतलाते हुए व्यास जी महाराज आज्ञा करते हैं कि सर्व वेदांत सारम्यत ब्रह्मात्मिकत्व लक्षणम वस्वद्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम। ये भागवत शास्त्र क्या है कि सभी वेदांतों का सार है। अद्वितीय वस्तु जो श्री हरि है, श्री कृष्ण है, उनको बतलाने का साधन है और इसका एकमात्र प्रयोजन है कैवल्य। अब कैवल्य शब्द के अर्थ में अनेकों विद्वानों के अनेकों प्रकार के तात्पर्य हैं। पूर्व में रंगलक्ष्मी विद्यालय के प्रधानाचार्य जी कह ही चुके हैं कि केवल शब्द से स्वयं प्रत्यय करके इसको सिद्ध किया जाता है। उसका तात्पर्य है कि इस शास्त्र का प्रयोजन केवल कैवल्य है और उस कैवल्य को शाब्दिक दृष्टि से मुक्ति अर्थ किया जाता है, किंतु भक्त लोग मुक्ति की अपेक्षा भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं। दीमानम न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनम जनाः। मुक्ति कोई साधारण तुच्छ वस्तु नहीं है। भगवान अपने श्री मुख से कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति मुक्तये। हजारों मनुष्यों में कोई पुरुष ऐसा होता है जो मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है और भक्त लोग उस मुक्ति के लिए तुच्छ मान के भगवत सेवा को मानते हैं प्रधान रूप से। तो यहाँ पर भक्त लोगों के मत से कैवल्य शब्द का अर्थ प्रेमा भक्ति है। प्रेमा भक्ति ही एकमात्र भागवत शास्त्र का प्रयोजन है। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को पवित्र करता हूँ।
गोवर्धनस्य विद्येन गोवर्धनस् है तो मतलब आगे गोवर्धनस् विद्येन श्री जगदीश शास्त्र गोवर्धन के विद्यालय के आप प्राचार्य गोवर्धनस्य विद्येन श्री जगदीश शास्त्रणा व्याख्यातम भक्त वैशिष्ट्यम कैवल्यैक पदेन च। अब अग्रे मैं निवेदन करूंगा। हरिहर जी आप पधारे जरूर पधारे। शास्त्री वयोवृद्ध शास्त्री जी श्री हरिहर
सुकुंसाजुसंसम तदसुभागवतम वसुनायम मुहुर्हो रसुकाभुभावक। कैवल्य प्रयोजनम कैवल्य प्रयोजन कैवल्य जैसे सारूप सामिप सारोक सातंत्रा सात प्रकार की मुक्ति है। वो मुक्ति उनकी जो बहुत व्याख्या आपने सुनी कैवल्य निवेदन कैवल्य प्रयोजनम। एक कौन सी प्रयोजन क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, वो वेदांत का सार क्या है। श्रीमद् भागवत पुराण में निगम का पदों का संपन्न निगम का तो वृक्ष है वो स्वयं वेदों का तो स्वरूप ही है और वेदों का वेदांत तो वेदांत का स्वरूप क्या है। ये हमारी ब्रज की जो गोपिका है जो है गायनी है बेचारे वेदांत को क्या जाने। योग जो बहुत कठिन वस्तु है। जैसे आरंभ में सुखदेव जी महाराज ने द्वितीय स्कंध में वर्णन किया है सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति में बताया हुआ है उन्होंने योग बताया हुआ है कि वो भगवान वो जीवात्मा कहाँ रहे और वो कहाँ स्वरूप है और ब्रह्म से कैसे मिले। तो उन्होंने वह कुंडली शक्ति को उदाहरण दिया है जब मूलाधार के बीच में प्रवेश के रहकर निवास करे है और आधारित प्रदा को बड़ा स्वरूप प्रशिक्षण स्वरूप है। भागवत में भी आता हूँ जीवायाम सूक्ष्म रूप है भगवान जीव में सूक्ष्म जीव हो भगवान इजाज में कहो इजाज। तो सूक्ष्म वस्तु परम तत्व वो जीवात्माएं केवल तो केवल्य को प्राप्ति के लिए वो जीवात्मा चढ़ता है। तो चढ़ता है वो किस प्रकार जाता है योगी इसको जानते हैं। वो सत्यत्व का भेदन करके ब्रह्म में लीन होता है। श्री राजा रानी
मांस भोग से चलती, मांस रोबर से चलती चलती और वृंदावन पहुंच जाती है। और वृंदावन में राज क्रिया का जो आनंद है वो भक्तों को देती है, वही कैवल्य है। कैवल्य एक प्रयोजनम, वही कैवल्य है जिसमें भक्तों को परम आनंद की प्राप्ति हो। मरने के बाद मोक्ष होती है इसको तो जानने वाले जानते हैं, लेकिन जीवन में जीवन मुक्ति इसी का नाम है। तो भगवत प्राप्ति के लिए भगवान का जो आनंद है वो सर्वानंद है, उसको प्राप्त हो। क्यों तो सर्व सप्ताह जीवन का यही है। तो गोपी गोपियों का क्या क्या देखती है, ब्रह्म का क्या रूप देखती है, विज्ञान का क्या रूप देखती है। नंदन के चांगे मया दृष्टम गोधूल धूसरांगो नच्चत वेदांत सिद्धांत। वेदांत को सिद्धांत कहाँ है, और परब्रह्म जो है वेदांत को सिद्धांत साकार रूप में है, कहते हैं बालक रूप में, और ब्रज की धूल में गोधूल धूसरांगो नच्चत वेदांत सिद्धांत। ऐसे वेदांत को जो सिद्धांत है वो नृत्य का नाच है, और ब्रज के बीच में यही वेदांत को सिद्धांत है। सिद्धांत में कई वजह के प्रयोजन एक मोक्ष भक्ति ही सबसे ज्यादा ऊंची है। मोक्ष को नहीं माने भक्त लोग, मोक्ष को नहीं माने मोक्ष की कामना ही करें। भक्तन को तो भगवत या भगवत को प्रेम की आवश्यकता है, या ये प्रेमा भक्ति के द्वारा दूसरी गोपी गए हैं वेदांत सिद्धांत। अरे सखी ने वेदांत को सिद्धांत ऐसा ब्रज में दिखाओ, क्यों बातें कहे कि नहीं कि ना मक्खन खड़ाए तो भगवान नित्य से वेदांत सिद्धांत हो। वेदन को जो सिद्धांत है वो बहुत बात निश्चित कर रहे हैं, और ऐसे वो परब्रह्म परमात्मा जो है हमारे गोपी ने ब्रजवासी ने वह रस के आनंद रूप में प्रेम के रूप में देखा हुआ है, वो प्रेम स्वरूप ही है। या प्रकार भगवान आज की आज्ञाएं भाई समाचि जी की, अब मैं यहाँ विश्राम कर रहा हूँ।
प्राप्त ये चोक्तम राधा दंड करम पुनः श्री हरिहर विज्ञेन कथितम चात्र संसदि श्री वल्लेव जी आचार्य गोकुलस्था।
जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोऽसौ, जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप, जयतु जयतु मेघश्यामलकोमलांगो, जयतु जयतु पृथ्वी भारहारो मुकुंदः। सकलश्रुतीनां ऋग्ञौ किमपि फलौ देवकी फलति तत्पालयति यशोदा प्रकाममुपभुञ्जते गोप्यः। परमादरणीया पूज्यपाद स्वामी महाभागा, अनल्पादरणीया विद्वांसः समुपस्थिता भक्तगणा, मातृशक्तये ये कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव है। मथुरा में कृष्ण ने जन्म लिया, कृष्ण परमात्मा है, उसकी प्राप्ति ज्ञान से होती है। मत्स्येति जगत सर्वम ब्रह्म ज्ञानेन येन वा तत्सार भूतम यत्सर्वम मथुरा सा निगद्यते। ब्रह्म जिसने भी ब्रह्म वेदांत हैं, उपनिषद हैं, सबका सार मथन करने पर जो माखन निकला तत्व मथुरा है, भगवत स्वरूप है। अर्थात यही ज्ञान है, जब ज्ञान रूप तत्व है इसी में भगवान परम ज्ञान सत्यानंत ज्ञान की उत्पत्ति हुई। लेकिन ज्ञान स्वयं क्षण द्वयावस्थाई होने के कारण उस अनंत पूर्ण ज्ञान को संचित करने में असमर्थ है, इसलिए इस गोकुल में यशोदा के यहाँ उस ज्ञान को पहुंचा देती है वसुदेव। वसुदेव मथुरा में ज्ञान क्या जो स्वरूप परमात्मा उत्पन्न हो रहा है उसको गोकुल पहुंचाती है। गोकुल क्या है, ये मानव शरीर ही हमारा आपका गोकुल है। गवाम इंद्रियाणाम कुलम निवसंत यत्र तत् गोकुलम, ये इंद्रियों का समूह इसमें विराजमान है, इसलिए ये शरीर ही गोकुल है। इसमें जो बुद्धि है वो यशोदा है, उसी के द्वारा प्राणी को यश प्राप्त होता है। यशोदाती यशोदा, बुद्धि से ही यश प्राप्ति होती है। बुद्धि बिना प्राणी जो है यश अर्जित नहीं कर सकता। और मन जो है वही नंद है, आनंद की अनुभूति मन के द्वारा होती है। यदि मन किसी कार्य में नहीं है तो जरा भी आनंदानुभूति प्राणी को नहीं हो सकती। इसलिए जब वसुदेव रूपी मथुरा का ज्ञान जो है उस परम ज्ञान परमानंद स्वरूप भगवान के लिए यशोदा रूपी बुद्धि और नंद रूपी मन के लिए समर्पित कर देता है, तो वहां इस देह के लिए आने वाली जो अविद्या रूपी पूतना है, सबसे पहले वो अनंतानंद स्वरूप उस अविद्या रूपी पूतना का वध करती। उसके बाद संसार में भगवत सेवा में बाधा आने वाली जो द्वंद्व है, जिन द्वंद सहिष्णु को तितिक्षा कहा गया है, द्वंद सहिष्णुता को, उन द्वंद रूपी यमलार्जुन का उच्छेद भी प्रभु उस मन रूपी नंद और यशोदा के तुम्हारे साथ बंधन रूपी बध करके, दामोदर होकर के और द्वंद्वोच्छेदन करके उसे बिल्कुल भक्ति के योग्य बनाने के लिए तितिक्षु बना देते हैं कि भाई आज से तेरे सारे द्वंद समाप्त हुए। अन्य भी, क्योंकि ये भागवत है, इसमें कहा है अत्र सर्गो विसर्ग छो स्थानम पोषण मूतयो मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्ति राष्ट्रयः। तो ये दशम निरोध है भागवत प्राप्ति में, जितने निरोध हैं भगवान उनको दूर करते हुए उसको अगारी बढ़ाती हैं। एकादश में मुक्ति का वर्णन किया है। यदि प्रसंगानुगत कैवल्य शब्द का केवल मुक्ति ही प्रयोजन मान लिया जाए तो ये प्रसंग संगत मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि भागवत शास्त्र भी एक काव्य है। और चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्प धियामपि काव्यादेव यतस्तेनो तत्स्वरूपम निरूप्यते, ऐसा साहित्य दर्पणकार ने कहा है। और सद्य पर बताइए मम्मट स्वयं तुम्हारे साथ उसमें काव्य होके उसमें लिखते हैं कि काव्यम यशसेक्ष कृते व्यवहार विदेश वेतर क्षतये सद्य पर निवृतये कांता सम्मित उपदेश युजे। तो पर निवृत्ति और कांता सम्मित उपदेश युक्तता जो है वो हमारे भागवत आदि पुराणों में उपलब्ध है। इसलिए चतुर्वर्ग फल में जो तुम्हारे साथ परम पुरुषार्थ मोक्ष है उसके लिए एकमात्र इसका प्रयोजन मानना जरा भी युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता। इसलिए केवलानुभव आनंद, वो भगवान कैसा है कि केवल अनुभव से प्राप्त होती है। तो केवल शब्द यहाँ अन्य सभी प्रकार के उसको अद्वितीयता अनुभव में जैसे सिद्ध करता है, ऐसे केवल शब्द का अर्थ है अद्वितीय। भगवान श्री कृष्ण के समान संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। क्यों कि भागवत का मूल चतुर्थ श्लोकी में भी यही है, यो वे में अग्रे जो कुछ हो आगे वो मैं ही हूं। तो इसलिए केवल भगवान ही, यदि हम मुक्ति को अर्थ मानेंगे तो स्वयं भगवान स्वयं कहते हैं कि सालोक्य सार्ष सामीप्य सारूप्य एकत्वमप्युतो दीयमानं न गृह्णन्ति बिना सेवनम जना। सारूप्य सालोक्य सामीप्यादि में यदि भगवत सेवा सन्निहित हो तब तो वो मुक्ति भगवत भक्तों के लिए ग्राह्य है, अन्यथा भगवत सेवा विहीन वो मुक्ति भगवत भक्तों को ग्राह्य नहीं है। और इसलिए एकत्व को तो किसी भी प्रकार में स्वीकार ही नहीं किया है। तो मुक्ति अर्थ मानना बिल्कुल प्रसंग संगत नहीं है, क्योंकि भागवत में कहा है अत्रानुवर्ण्यते साक्षात भगवान हरिश्वर। इसमें तो पद पद पर भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है और द्वादश स्कंद के अनुसार आश्रय रूप श्री कृष्ण ही इसके हैं। तो आश्रय जो कृष्ण है वही एकमात्र संसार में केवल अवशिष्ट बचते हैं। इसलिए केवल श्री कृष्ण सच्ची भाव सेवा रूप कैवल्यम तदेव प्रयोजन। भगवान की सेवा जो है वही एकमात्र इस जीव का आत्मा का संसार का भागवत के उपदेश का शास्त्र का प्रयोजन है। यही कैवल्य ही का प्रयोजन का मतलब है नग्न मुक्ति पर।
रामकृष्णाचार्य की पढ़ा रहे हैं। श्रीबलदेवाचार्य गोकुल तत्समागत प्राचार्य गोकुल के प्राचार्य हैं वैसे आचार्य ज्ञानादर कम भक्ति वर्णयत केवल श्री राम कृष्णाचार्य
श्री गोवर्धननाथ पादयोलम हय्यंगवीन प्रियम नित्यम श्री मथुराधिपम सुखकरम श्री विठ्ठलेश मुदार श्रीमद्वारवती सुगोकुलपति श्री गोकुलेन्द्रम विभुम श्रीमन मन्मथ मोहनम नटवरम श्रीबालकृष्णम भजे।
यहाँ पर बालकृष्ण की ही चर्चा हो रही है। कैवल्य शब्द के जो आचार्य हैं हमारे श्री कृष्ण, उनका जन्म मथुरा में ही हुआ। और विचित्र बात तो ये है कि जिसकी हम साधना करते हैं, उपासना करते हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, वो प्रभु रसो वैशा के रूप में हम भक्तजनों की अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं। रसो वैशा यम लब्ध्वा तृप्तो भवति अमृतो भवति आनंदो भवति। वो प्रभु मथुरा में पधारे, मथुरेति त्रवर्णीयम त्रयी तोपगरीयसी साधावत पर ब्रह्म ब्रह्मी नाम अनुधावती। वो ब्रह्म जो आज जिससे रस स्वरूप रसात्मक अपने भक्तों पर जो कृपा करते हैं और जिस कृपा के द्वारा भक्त वो अनवरत भक्ति में लीन होते हैं। भक्ति भी कलियों में बतलाई है भक्त रे कई व मुक्तदा कलऊ नास्तेव 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 गतरण्यथा। अब वो भक्ति भी तीन प्रकार की आपने बताई, जैसे हमारे वृत्रासुर के भाव में है सुंदर अहम हरे स्तव पादैक मूल दासानुदासो भवेतास्म भूय मन स्मरेतां सुपतिर गुणांस्ते गृणीतवाक कर्म करो तो काय। भक्ति कौन सी करनी चाहिए, कायक वाचक मानसिक, तीन प्रकार से प्रभु की प्राप्ति होती है। कोई कायकी भक्त सेवा से प्रभु को प्राप्त कर होता है, कोई वाणी की सेवा, कोई मानसी। तो वहां कहते हैं मानसी सा परामता। यदि कलयुग में आपके पास इतना समय नहीं है कि आप शारीरिक सेवा प्रभु की कर सकें और प्रभु प्राप्ति कर सकें, तो आप वाणी से भगवत गुणानुवाद भगवान का संकीर्तन उनको करें और उससे उस प्रभु की जो कैवल्य प्राप्ति है उसको करें। यदि वो भी न हो सके, इतना भी समय नहीं, तो आप जहां भी जाते हैं आते हैं केवल मानसिक ध्यान कर लीजिए। मानसी जो सेवा है वो सबसे सर्वोच्च सेवा है। इसीलिए भगवान से वृत्रासुर ने प्रार्थना की कि प्रभु हमको तो आप काय की वाच की मानसी ये तीनों ही प्रकार की सेवा दें। मुक्त कहे गोपाल सो मेरी मुक्त बताए, प्रभु कहे ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्त मुक्त है जाए। तो कैवल्य के प्रयोजन हम हमारी ब्रज भूमि के जो आज सर्वोच्च श्री कृष्ण हैं, जो यहाँ पर यहाँ जन्म ले लेता है वो भी आज उस मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। चाहे वो तप करे या सिद्धि करे, योग करे कि नहीं करे, मथुरा और ब्रज भूमि में जन्म लेने से ही उसकी जो है वो भक्ति सफल हो जाती है और वो प्रभु के प्राप्त प्रभु के चरणों के समीप जीव पहुंचता है। क्योंकि मथुरा में आपने ये बताया कि कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग, यहाँ जहाँ वो कैवल्य का पति रसो वैशा कृष्ण है वहाँ बतलाया है कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग, यहाँ केशव की खेल कुंज कोट कोट काशी है यमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर तरु तरु तरें यहाँ अयोध्या के वासी।
गोपिन के द्वार 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 का बसत यहाँ, बद्री के द्वार यहाँ बसत उदासी हैं, स्वर्ग और अपस्वर्ग को लेके करेंगे कहा हमको श्री ब्रज मथुरा के वासी। तो महाराज ये कैवल्य के प्रयोजनम तो हमारे मथुरा में ही जो पधारे और जिनका जन्म हुआ, जिसने थोड़ी भी वो प्रसादी लीली भक्ति की कीर्तन की तो उसकी तो मुक्ति यहाँ आने से ही हो जाती है। बस मैं इतना ही आपकी सेवा।
मथुरा बार बार प्राचार्य को भी मता, मथुरा द्वारकाधीश प्राचार्य, मथुरा द्वारकाधीश प्राचार्य को भी मता व्याख्यातम भक्त वैशिष्ट्यम रामकृष्ण शास्त्री श्री वसंतलाल जी शास्त्री।
या निर्वृति तनुभृताम तब पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वास्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत् किन्त्वन्तकासि लुलितात् पततां विमानात्। परमादरणीय अध्यक्ष महोदय, समुपस्थित गुरुकल्प विद्वान एवं महात्मा वृंद, वैष्णव वृंद, मातृकल्प एवं बहने, इतना कुछ आप सुन चुके हैं कि प्राचार्यों के द्वारा अभी यहाँ बैठे बैठे एक अर्थ मेरी बुद्धि को कदाच भगवान ने ही प्रेरित करके दिया है। बुद्धि प्रेरक कृष्णस्य पाद पद्मम प्रसीदतु, बुद्धि के भी प्रेरक वही हैं। मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि मैंने किसी टीका में ये अर्थ नहीं देखा, किंतु बैठे बैठे आप सभी के दर्शन करके मुझे जो अर्थ उद्भूत हुआ है वो मैं निवेदन कर दूं, क्योंकि मेरी समझ में संपूर्ण श्लोक ही विषय है, कोई एक पद कदाचित नहीं। सर्व वेदांत सारम यत् ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तुद्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजन। चतुर्थ पद पे आपने बहुत अर्थ श्रवण किए हैं और कदाचित मैं भी कुछ विवक्षा लेके बैठा ही हूँ, लेकिन ये ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम की अभी एक बात मेरे मन में आई कि ब्रह्म पद से यहाँ भगवान रसात्मा श्री कृष्ण को ग्रहण करें तो कैसा रहे, और आत्मा शब्द से यदि श्री राधा रानी को ग्रहण करें तो कैसा रहे। ध्रुवम आत्मास्ते राधिका, क्योंकि भगवान की आत्मा श्री राधा रानी को कहा ही गया है, अतः श्री राधा कृष्णयोः एकत्व लक्षण युतम श्री भागवतम, ऐसा भी यदि अर्थ करें तो कैसा रहे। अभी बैठे बैठे मेरे मन में ये बात आई, मैंने आपको पहले ही निवेदन कर दिया, सभी विद्वान बैठे हैं, किसी टीका से ये अर्थ मैंने देखा नहीं है, इसलिए यदि कोई प्रमाण मांगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैंने देखा नहीं है कहीं। और मुझे कुछ बड़ा अद्भुत लग रहा है कि कैवल्य शब्द का अर्थ मोक्ष तो है ही करते हैं लोग, और है भी, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है कि कैवल्य शब्द का अर्थ मोक्ष नहीं है। और कैवल्यैक प्रयोजनम से यदि मोक्ष इसका अर्थ माने तो मेरी समझ में वैष्णवेतर संप्रदाय तो मानते ही हैं, और यदि वैष्णव भी माने तो कदाचित मैंने एक वैष्णव से बंबई में श्रवण किया कि मोक्ष जो कैवल्य शब्द का अर्थ है तो मुक्ति के भी अनेक कल्प माने। कोई कहते हैं जल में जल का मिल जाना जैसे होता है, ऐसे ही जीव का भगवान में मिल जाना, आत्मा का परमात्मा में लय हो जाना, इसका नाम मुक्ति है। तो जल में जल बन करके ही लय होना, इसी का नाम मुक्ति है। मैं भी पहले ऐसा समझता था, पर उन्होंने मुझे बताया कि जल में एक अंगूर डालो, क्या वो जल में नहीं मिला है, पर जल में रहते हुए भी उसकी अपनी पृथक सत्ता है तो सही वो जल में, क्या वो जल में मिला हुआ नहीं है। हमने जल में एक अंगूर डाला तो जल में तो वो मिल ही गया है, जल में मिलते हुए भी उसकी अपनी सत्ता है, उसने अपनी सत्ता को नष्ट नहीं किया है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा वाह, हम भगवान के नाम संकीर्तन में तन्मय हों, तन्मयता उनमें लय ही है एक प्रकार का, लेकिन अंगूर के जैसे पानी बन के कदाचित नहीं, क्योंकि उसमें जले निमग्नस्य जल पानवत क्या स्वाद आएगा। और भक्ति का वैशिष्ट्य तो सर्वथा ही सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक मान्यताओं की बात है, कुछ लोग कहते हैं ऐसा माने, तो किसी वस्तु को मान लेना दूसरी बात है और वास्तव में ही उसकी श्रेष्ठता होना यह दूसरी बात है। मेरी समझ में भक्ति की श्रेष्ठता मान लेने की चीज नहीं है, वो तो स्वभावतः वैसे ही सिद्ध है। और आप तो सब विज्ञ हैं, आपने कभी, मैंने तो कोई ऐसा उदाहरण नहीं सुना कि किसी भक्त ने मोक्ष की इच्छा की हो, लेकिन ज्ञान मार्ग के भगवान शंकराचार्य के आदि शंकराचार्य के शिष्य श्री मधुसूदन सरस्वती महाराज अवश्य उन्होंने भक्ति की कामना की, और वृंदावन में यहाँ आके उन्होंने कहा शठेन केनापि वयम् हठेन दासी कृता गोप वधु विटेन। तो ज्ञान मार्गियों का भक्ति मार्ग में प्रवेश तो देखा, उनको भक्ति की कामना करते पाया, ऐसे दृष्टांत मिलते हैं, उदाहरण मिलते हैं, इससे स्वतः सिद्ध हो जाता है। लेकिन किसी भक्त को मोक्ष के लिए हाथ फैलाते हुए हमारी दृष्टि में कोई दृष्टांत, मेरी दृष्टि में तो अभी तक नहीं आया, इसलिए सहज सिद्ध हो जाता है कि वो एक वैशिष्ट उसमें है, एक विशिष्ट पदार्थ है। और कैवल्य शब्द का जो अर्थ आपने श्रवण किया है प्रायः करके सभी प्रवक्ताओं से, सभी महान भाव आचार्यों से, कि केवलस्य भावः कैवल्यम, केवल भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र प्रयोजन है, क्योंकि अत्रान वर्ण्यते भीक्षणम सर्वात्मा भगवान हरि ही, ये स्पष्ट ही है। और वैसे भी मोक्ष को विशेष करके यहाँ व्रज में आदर नहीं ही दिया जाता, ये यहाँ की रज का भी कुछ वैशिष्ट्य है कि मुमुक्षु कोई यहाँ आता भी है तो बेचारा गिर ही पड़ता है। हमने अपने पूज्य गुरुजी के मुख से एक बात सुनी थी कि यहाँ मानसरोवर में, मानसरोवर है वृंदावन के निकट ही, वहाँ एक बार नारद ऋषि रो रहे थे। तो नारद ऋषि रो रहे थे तो उनसे ब्रह्मा जी महाराज ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, आप तो देवर्षि हैं, रो क्यों रहे, किसके लिए रो रहे हैं, आपको क्या कष्ट है। तो नारद ऋषि ने ही बतलाया कि जो मुक्त हो गए हैं उनके दुर्भाग्य को रो रहा हूं। क्यों भैया, ऐसी क्या बात हुई? तो बोले मुक्त हो गए भाग्यहीन, नहीं तो उनको यहां व्रज रज में खेलते हुए भगवान रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण के अनेक रूप और लीलाओं के दर्शन का आनंद उनको प्राप्त होता, पर क्या करें, कदाच उनके भाग्य में ये था ही नहीं, इसलिए उनके दुर्भाग्य को रो रहा हूं। इसलिए भक्ति का वैशिष्ट्य सिद्ध करने की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता, वो तो स्वतः सिद्ध है। और अधिक आप सब सुन ही रहे हैं, मैं भी उत्सुक हूं सुनने के लिए, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
श्रीवसंतेन ब्रह्मात्मत्व विवेचन, ब्रह्म आत्मा ब्रह्मात्मत्व विवेचने श्री राधा कृष्णयोरत्र व्याख्यातम भक्तदर्शन। अब हमारे तीन वक्ता रहे, शिव कुमार ब्रह्मचारी जी है, मैं हूँ ब्रह्मचारी जी संयोजन करूंगा, श्री जवान जी मंत्र पढ़ाए और तीन वक्ता हो
राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो।
अश्वनीय गुरुपाद पद्म में असंख्य कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित पूज्य वैष्णवजन, विद्वतजन सभी के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम स्वीकार हूँ। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मथुरा में हम लोगों को निवास करने का जैसे कुछ सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसके उस क्षण के बीच में आप शरीर के महानुभवों का दर्शन यह भी अतिशय दुर्लभ है। आप लोगों के विचारों को सुन करके हृदय अतिशय हर्षोल्लास से आनंद से उच्छसित होता है। मैं इस सभागोष्ठी में कुछ कहने योग्य नहीं हूँ, फिर भी महाराष्ट्र की आज्ञा ही बलवती है, इसलिए आप सभी लोग हमें क्षमा करेंगे। हम टूटी फूटी शब्दों में अपनी वाणी को व्यक्त करने का प्रयास करूँगा। आज का विषय है जो कि सर्व वेदांत सारम जब ब्रह्म आत्मैकत्व लक्षणम वस्तु अद्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम। इस श्लोक में चारों पद देखने को मिलता है जिसमें चारों विषय पर वर्णन होता है। सबसे पहले जो कि कहा जा रहा है कैवल्यैक प्रयोजनम, श्रीमद कृष्ण दैवायन वेदव्यास जी वेदांत सूत्र में एक सूत्र वर्णन करते हैं कि लोकवत्तु लीला कैवल्यम। लोकवत्तु लीला कैवल्यम, भगवान की लीला कैसी है कि लोकवत् साधारण मनुष्य जैसे किंतु साधारण मनुष्यों के जैसे नहीं है। भगवान निराकार स्वरूप है, उनकी लीलाएं मनुष्य जैसी लीलाएं, परंतु उनका जन्म कर्म अलौकिक दिव्यम अप्राकृतम अलौकिकम। श्री सिद्धार्थ स्वामी पाद भी अलौकिक शब्द वर्णन करते हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी अप्राकृत रूप से वर्णन किया है कि भगवान की लीलाएं अप्राकृत अलौकिक दिव्य है। इसलिए यह लोकवत्तु लीला कैवल्यम, वह लीला ही एकमात्र कैवल्य ही कैवल्य जाने उसी की प्राप्ति ही एकमात्र प्रयोजन है। इसको हम पीछे वर्णन करते हुए हम पहले यही कहेंगे सर्व वेदांत सारम, यह श्रीमद भागवत जो है समस्त वेदांत का सार है। वेदों को हम चार भागों से देखते हैं, एक मंत्र भाग, दूसरा है ब्राह्मण भाग, जिसमें पद्याकार में वेदों में जो मंत्र संहिता का वर्णन उसको मंत्र भाग, और ब्राह्मण भाग में जिसमें गद्याकार में विधि विधान का वर्णन उसको ब्राह्मण भाग कहते हैं। तीसरा है आरण्य भाग, चौथा है उपनिषद भाग। आरण्य भाग यहाँ पर अरण्यों में जंगलों में ऋषियों ने छात्रों को शिक्षा दी है, ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। ऐसे ही उपनिषद भाग यहाँ पर ब्रह्म विद्या का उपदेश, समस्त शास्त्र वेदों का सार जिसमें निचोड़ कर रखा गया है उसको उपनिषद कहते हैं, और उसी का सार संकलन करते हुए 550 सूत्रों में वेदांत सूत्र बना है जो कि श्रीमद कृष्ण दैवायन वेदव्यास जी ने लिखा है, जिसमें कि अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा करके इसमें 550 सूत्रों में यह समस्त वर्णन हुआ है। तो उसी में ये देखा जाता है कि श्रीमद भागवत जो है समस्त शास्त्रों का, समस्त वेदांत का, सबका सार निचोड़ है। इसलिए श्रीमद भागवत को निर्गुण शास्त्र और दशम लक्षण युक्त श्रीमद भागवत को समस्त गुणों से अतीत विशुद्ध निर्गुण शास्त्र माना गया है। इसलिए श्रीमद भागवत जो है श्रीमद कृष्ण दैवायन के वेदव्यास जी के कोई मस्तिष्क का उपज नहीं, यह है समाधि भाषा। जैसे समाधि में उन्होंने दर्शन किया उसी प्रकार श्रीमद भागवत रत्न को उन्होंने प्रकाशित किया है। इस प्रकार जो श्रीमद भागवत शास्त्र है सर्व प्रमाण शिरोमणि ग्रंथ, उसमें क्या वर्णन करते हैं वस्तु अद्वितीयम तन्निष्ठम ब्रह्म आत्मैकत्व लक्षणम। वस्तु अद्वितीयम, श्रीमद भागवत के उपक्रम में पहले ही हम देखते हैं कि वस्तु वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम, वास्तव वस्तु ही एकमात्र वेद्य है। अब वास्तव वस्तु माने क्या होता है? वास्तव शब्द से वस् धातु तुपत्तय करके वास्तव शब्द जिसका अस्तित्व और नित्य सत्ता और प्रतिति है उनको वस्तु माना गया। ऐसे जो नित्य सत्य वस्तु है जिसको भक्ति भक्त और भगवान तीनों में ही लिया गया है कि तीनों वस्तु का ही निरूपण श्रीमद भागवत में किया जा रहा है। एक और भगवान का, भगवान की विशेषता, भगवान भगवत स्वरूप की चमत्कारिता, भक्ति की महिमा, भक्तों का वैशिष्ट इस प्रकार, और भक्ति का प्रेम, ये भक्ति का तारतम्य इत्यादि से दिखाया गया। तो इसमें वस्तु अद्वितीयम तन्निष्ठम, और उसी को उपसंहार में कहते हैं कि अद्वितीय वस्तु जिसको जीवस्य तत्त्व जिज्ञासा, इसमें वर्णन किया है कि तत्त्व जिज्ञासा क्या है। तो उसमें कहते हैं वदन्ति तत्त्वविदस्त्वम् यद्ज्ञानम् अद्वयम्।
अध्ययन परतत्व की बातें कही है। वह अध्ययन परतत्व जो तत्वविद विद्वानों ने वर्णन किया है, तो वह अध्ययन परतत्व क्या है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दति। ब्रह्म शब्द से, परमात्मा शब्द से, भगवान शब्द से जिनको कहा करते हैं, तो ब्रह्म परमात्मा और भगवान ये तीनों ही कोई अलग अलग पृथक पृथक नहीं है, तीनों ही एक ही स्वरूप के क्रम विकास में वैशिष्ट चमत्कारिता दिखाया गया। जिनके अंग ज्योति को ही ब्रह्म शब्द से कहा है, जैसे जिनके उपनिषदि तदपश्चात अनुभा जस्य ब्रह्मेति संज्ञा कथितपि निगमे जाति चिन्मात्र सत्या पंशो यस्यां सकैर सैर विभवति वसयन्नेव मायां पुमांश्च। श्रील जीव गोस्वामी पाद कहते हैं निगम शास्त्र में जिनको चिन्मात्र सत्ता के रूप में वर्णन किया है वह है ब्रह्म। अंश स्वरूप परमात्मा जो अंतर्यामी है, अंतर्यामी है वह है परमात्मा। और जो सर्विद ऐश्वर्य के निलय, जो माधुर्य और ऐश्वर्य के खान है, रसघन ब्रह्म है, रसघन विग्रह है, वे हैं भगवान श्री कृष्ण, जिनको कृष्णस्तु भगवान स्वयं कहा है। इस प्रकार वस्तु शब्द से भगवान की भगवत्ता का प्रतिपादन करते हुए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसी को परिभाषा शब्द के द्वारा नियमित कर दिया कि स्वयं भगवान कौन है? एकमात्र भगवान कृष्ण, उनकी भक्ति ही एकमात्र प्रयोजन है। जैसे तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् वेदांत में कहा है, उनकी निष्ठा ही एकमात्र प्रयोजन है। उसी को ही कहा है कि भक्ति जो है केवल भक्ति प्रेमतः ही सीमित नहीं है। भक्ति की परिभाषा में हमारे आचार्य लोगों ने तो यह वर्णन किया है कि श्रद्धा से लेकर के साधु संघ गुरु पदाश्रय भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भावावस्था इसके बाद प्रेम। और प्रेम की अवस्था में भी और वर्णन करते हुए दिखाया श्रीमद्भागवत जी में कि प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ अधिरूढ़ मोदन मोहन मादन, इस प्रकार मादनक्ष महाभाव की जो पराकाष्ठा है वह दिखाया गया है। जैसे श्रीमद्भागवत जी में हम देखते हैं कि नित्य युयाम दुरापम गोप्यस्य कृष्ण मुपलभ्य चिराद भेष्टम जत प्रेक्षणे दिशिषु पक्ष कृताम सपन्ति तद्भावम मापुरपि नित्य युजाम दुरापम। गोपिया उस भाव को कृष्ण दर्शन में चिर विरह में उत्कंठिता, तो गोपिया उस भाव को प्राप्त हुई कि शुद्ध बुद्ध खो गए थे, ऐसी तन्मय स्थिति है जहाँ की उनको ये पता नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, किस स्थिति में हूँ। नित्य युजाम दुरापम, नित्य युजाम का अर्थ कहे तो ये हमारे आचार्य लोगों ने यही कहा है कि नित्य युजाम नित्य संयोग में रहने वाले जो ब्रह्मा शिवादि देवता लोग हैं, बड़े बड़े योगिंद्र हैं, मुनिंद्र हैं, और नित्य युजाम जो की महिषियां हैं द्वारका की, नित्य संयोगिनी महिषियां, उनके लिए भी जो भाव दुर्लभ है वह परम विशुद्ध भाव को गोपियों ने प्राप्त किया है कि महाभाव की पराकाष्ठा में पहुंची हुई है। श्रीमद् भागवत जी ने इस महाभाव की पराकाष्ठा को लक्ष्य किया है, उसी को दिखाया। जब ब्रह्म आत्मा तत्व लक्षण, अभी अभी पूर्व वक्ता जी ने जैसे ब्रह्म और आत्मा का राधा और कृष्ण से संबंध किया है, दोनों का मिलन रूप जो प्रेम विवर्त की स्थिति है, यह प्रेम विवर्त की स्थिति का वर्णन श्रीमद् भागवत जी ने किया है। इसी को ही कहा है लोकवत्तु लीला कैवल्यम लीला कथार असनिसेवणम अंतरेण, बिना लीला कथा रस के सेवन के कोई उपाय नहीं है। इसलिए लीला कथा ही हमारे लिए एकमात्र परम अमृत है, यही एकमात्र प्रयोजन है, यही जीवन का एकमात्र आस्वादनीय है। अतः यहाँ पर केवल ब्रह्म शब्द के द्वारा निर्विशेष कल्पना में ब्रह्मवाद में केवल मोक्ष का ही यहाँ पर किसी भी शास्त्रों में वर्णन नहीं किया है, क्योंकि उपक्रम श्लोक में देखा जाता है धर्म प्रज्जित कई तो वो अत्र वही तो वह धर्म प्रज्जित प्रकृष्ट रूपेण उज्जित जाने परित्यक्त मोक्षादिवीर अपि श्री सिद्धर स्वामी पाद वर्णन करते हैं कि मोक्षादिवीर अपि मुक्ति तत्व मोक्ष तत्व भी कपट धर्म सहित धर्म में वर्णन करते ये उसको श्रीमद्भागवत जी ने परित्याग किया है। यहाँ तक कि दशम स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी स्तुति में प्रार्थना करते हुए कहा है, अज्ञान संगौ भवबंध मोक्षौ। मुक्ति को भी एक अज्ञान संज्ञक बताया गया है। इस प्रकार दियमानम अपि न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना, तो किसी भी भक्त कोई भी भक्तों ने किसी भी प्रकार से मुक्ति को स्वीकार नहीं किया है भगवान के देने पर भी। इस प्रकार मुक्ति सुख को तुच्छ करके मुक्ति को रूढ़ करते हुए कैवल्यवाद जो निर्विशेष कल्पनामय वाद है उसको परित्याग करते हुए श्रीमद् भागवत में शक्ति परिणाम वाद की घोषणा की है। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में भगवान नित्य शक्ति से युक्त हैं, जो कि रीते अर्थम जत प्रतियेत न प्रतियेत चात्मणि तद विद्यात आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तम। त्रिविध शक्ति का वर्णन करते हुए आत्म माया सर्व शक्ति के साथ भगवान नित्य लीला विलास परायण है, अतः उस लीला ही एकमात्र कैवल्यम है। लोकवत्तु लीला कैवल्यम में इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। वंशागोत्र
ब्रह्मचारी समायात, मुझे तो लगा है शिवजी को भी आनंद नहीं आ रहे। ब्रह्मचारी समायात श्री शिवानंद दायक न को नाम कर लोकवत, लोकवत लीला कैवल्यम, लोकवत ब्रह्म सूत्र कैवल्यम वर्णन श्री कृष्ण वाणी।